ಸಮಯ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ
आज यहाँ पर उपस्थित जन्मदिन और मातृजन्म हम कल से चैतन्य महाप्रभु के संबंध में चर्चा कर रहे थे। सुबह के चरण भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और इस चैतन्य अवतार जो भगवान का प्रेमावतार है, इस अवतार का कारण क्या था उसके संबंध में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं अपने भक्त रूप में अवतरित होकर कलयुग के लोगों को भक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए आए थे और उसके साथ साथ अपनी जो अभिलाषाएं थी तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अंतरंग कारण थे, वो तो कृष्ण की अपनी अभिलाषा था। तो श्रीमती राधा रानी के भाव और अंग कांति को अंगीकार करते हुए कृष्ण प्रेम या राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका आस्वादन कर रहे थे, किंतु बाह्य रूप से तो भक्ति की शिक्षा दे रहे थे कलयुग के लोगों को। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने समग्र भारत का भ्रमण किया था। संन्यास लेने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी में वो 24 वर्ष वो निवास किए और उन 24 वर्षों से 6 वर्ष तक वो प्रचार में भारत भ्रमण करते रहे और शेष 18 वर्ष वो जगन्नाथपुरी में ही रहकर इस कृष्ण विरह का आस्वादन करने लगे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण में आए थे और उस समय महाराष्ट्र तक आए थे, उसके बाद वो जगन्नाथपुरी लौट गए और श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ के रथ के सामने उन्होंने नृत्य और गीत कीर्तन किया अपने भक्तों के साथ। उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि वे वृंदावन आए और वृंदावन आने का उनका उद्देश्य था कि उत्तर भारत में भी वो भक्ति का प्रचार करना चाह रहे थे, इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना चाह रहे थे और उत्तर भारत के लोगों को ये कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाह रहे थे। तो इस उद्देश्य से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की यात्रा प्रारंभ करने के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि प्रथम बार उन्होंने जब चेष्टा की थी वृंदावन आने के लिए तो उसमें वो सफल नहीं हुए थे। उस समय वो बंगाल होकर आ रहे थे और उनके इस महाभाव मय कीर्तन को देखकर बहुत सारे लोग उनके साथ एकत्रित हो गए और जहां चैतन्य महाप्रभु जाते थे उनके साथ लाखों लोग चलते थे, उनके नृत्य कीर्तन से ये लोग इतने आकर्षित थे और उनका सुंदर गौरवर्ण शरीर इतना आकर्षक था जिस प्रकार भगवान कृष्ण का रूप अत्यंत आकर्षक है। कृष्ण का रूप श्याम वर्ण और वो जिस प्रकार आकर्षक है कि चैतन्य महाप्रभु का रूप गौरवर्ण है और कृष्ण के समान भी उनका रूप भी बहुत आकर्षक है। तो जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करता था उनके प्रति आकृष्ट हो जाता था, तो लाखों लोग उनके साथ वृंदावन चलने के लिए उद्यत हुए। तब इस स्थिति में श्री सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि इस प्रकार वृंदावन की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब श्री माधवेन्द्रपुरी वृंदावन आए थे तो वो अकेले गए थे और जब गोविंद कुंड में गोविंद सिंह के तट पर श्री माधवेंद्रपुरी भगवान कृष्ण का भजन कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। और इतने सारे लोगों के साथ कोई वृंदावन जाए तो कैसे कृष्ण का अनुभव कर सकता है, कृष्ण का दर्शन कर सकता है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को इतने लोगों के साथ वृंदावन जाने के लिए मना किया। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से पूरी लौट आए, वो वृंदावन उस बार नहीं गए। अब दूसरी बार जगन्नाथ की रथ यात्रा के पश्चात तो वृंदावन जाने के लिए सोच रहे हैं। तो इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की इस वृंदावन यात्रा में हम ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि वस्तुतः कैसे वृंदावन जाना चाहिए, किस भाव अंतर में धारण करते हुए वृंदावन की यात्रा करनी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कलयुग के लोगों को दे रहे हैं। और उसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलाप ये भक्तों के लिए आदर्श है, भक्तों को इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि भक्ति का जो सिद्धांत है श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में उन सिद्धांतों को आदर्श के रूप में अपने व्यवहार में प्रस्तुत किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं ये भक्ति के सिद्धांत उसमें रूपांतरित हो जाता है। वह चैतन्य महाप्रभु की लीला भक्ति का सिद्धांत का ये मूर्तिमंत स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो हम देखते हैं ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन के संबंध में और लीला के संबंध में कि चैतन्य चैतामृत ग्रंथ ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के संबंध में और भक्ति के सिद्धांत के संबंध में इसमें वर्णन है। और इसके रचयिता है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उन्होंने इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना बंगला भाषा में की थी, किंतु प्रभुपाद ने इस ग्रंथ को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और आज ये श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ पृथ्वी के विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। इसलिए कोई भी इस ग्रंथ का अध्ययन कर सकता है, पाठ कर सकता है और चैतन्य महाप्रभु के लीलारस का आस्वादन कर सकता है। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु की श्री चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन यात्रा का वर्णन कर रहे हैं और हम इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से पाठ करके इस लीला का आस्वादन स्वयं करना चाहते हैं और आप लोगों को भी कराना चाहते हैं। तो यद्यपि इसके पद जो बंगला में है हम उसको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आपको हिंदी में समझाएंगे। गतं वृंदावनं गौर जाग्रे वैनाथगाने प्रेमोन्मत्तां सर्वमृत्यां बीरधे कृष्ण जल्पिना। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा कर रहे थे तो वृंदावन के पथ पर जब चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए यात्रा कर रहे थे तो उस समय पथ पर उन्होंने बाघ, हाथी और मृग और पक्षी इन सबको उन्होंने कृष्ण मंत्र में विकसित किया। अर्थात इस कृष्ण कीर्तन में अंशग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ वन के व्याघ्र, भालू या हाथी, पक्षी और अन्य पशु ये भी चैतन्य महाप्रभु के साथ ये नृत्य करने लगे और ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। तो प्रेमोन्मत्तान सहो नृत्य बीरभे कृष्ण जल सीमा। तो जंगल के पशु पक्षी भी चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे और कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे। तो वही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। सर्वप्रथम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और श्री नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम हैं उनका जयगान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उसके साथ साथ अद्वैत चंद्र जो कि महाविष्णु के अवतार थे वे भी चैतन्य लीला में अंश ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान महाविष्णु आए थे श्री अद्वैत चंद्र के रूप में। इस प्रकार उनकी उनका जयगान करते हुए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी समस्त गौरभक्त वृंद का भी जयगान करते हैं। जितने गौरभक्त वृंद हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं उन सभी का जयगान करते हैं। शरद काल हैला प्रभु चलित हैला माती रामानंद स्वरूप संगे निवृत युकाती। तो जब शरद काल उपस्थित हुआ क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये आषाढ़ महीने में होती है, वर्षा काल में वर्षा का आरंभ है आषाढ़ महीना। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये समाप्त हो चुकी थी और चैतन्य महाप्रभु शरद काल के प्रारंभ में वृंदावन जाने के लिए उन्होंने सोचा, किंतु जाने से पहले वो अपने भक्तों से विचार विमर्श करना चाह रहे थे। यद्यपि वो स्वतंत्र ईश्वर स्वयं कृष्ण हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से परामर्श करके विचार विमर्श करके वृंदावन जाना चाह रहे थे, क्योंकि एक बार वो जाने की चेष्टा कर चुके हैं और उसमें विफल हो चुके हैं। उनको डर था कि ऐसा ना हो कि वो दूसरी बार वृंदावन जाने के लिए प्रयत्न करें और लाख लाख उनके साथ चलने के लिए वृंदावन चल पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त लोग प्रेरित हो जाते हैं, जब कोई गुरु साथ में जा रहे हैं वृंदावन तो उनके शिष्य लोग जाना चाहेंगे स्वाभाविक, और चैतन्य महाप्रभु के अनेक भक्त तो उन लोगों को यह उनका आग्रह था कि चैतन्य महाप्रभु यदि वृंदावन जा रहे हैं तो हम लोग भी उनके साथ चलें। तो चैतन्य महाप्रभु यही डर था क्योंकि वो किसी को साथ में लेकर जाना नहीं चाहते, अकेले वृंदावन में जाकर कृष्ण रस का आस्वादन करना चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव। इसलिए उन्होंने विचार विमर्श किया अपने अंतरंग भक्त स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद। हम कल बता चुके हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी के भाव में थे तो उनके इस भाव में सहायता करने के लिए स्वयं ललिता जी और विशाखा जी ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद के रूप में अवतरित हुए। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ सदा सर्वदा रहते थे और उनके ये अंतरंग भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले इनके साथ विचार विमर्श किया और कहां पर विचार विमर्श किया, निवृत एकांत सबके सामने उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया क्योंकि दूसरे भक्तों को वो बताना नहीं चाहते। मोर सहाय कर जदी तुम्हें दुई जना तबे आमी जया रखी श्री वृंदावन। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम दोनों राय रामानंद स्वरूप दामोदर तुम दोनों यदि मेरी सहायता करोगे तो
तब मेरी इच्छा है कि मैं वृंदावन जाकर वृंदावन का दर्शन करूं। तो वृंदावन जाने की यात्रा कर, वृंदावन जाने के लिए मैं इच्छा कर रहा हूं। तो इसलिए भक्तों से सहायता मांग रहे हैं स्वयं भगवान, क्योंकि भगवान कभी कभी भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। भक्तों की इच्छा के अनुसार भगवान को चलना पड़ता है। जिस प्रकार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए थे तो भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो लीला करते थे। तो कभी कभी नंद महाराज भगवान कृष्ण से कहते थे कि कृष्ण मेरा पादुका ले आओ। तो भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में नंद महाराज के पादुका को माथे पर लेकर चलते थे। कभी कभी उठा नहीं पाते थे, कभी गिर जाता था पादुका। तो इस प्रकार भगवान लीला करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी भक्तों के इच्छा के अनुसार कार्य करना चाह रहे हैं, क्योंकि भक्तों के वशीभूत हैं भगवान। तो कहते हैं उनसे सहायता मांग रहे हैं। जो सारे संसार को सहायता प्रदान करने वाले भगवान, वो अपने भक्तों से सहायता मांग रहे हैं वृंदावन की यात्रा करने के लिए। तो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद के सामने। रात्रे उठी वाना पथे पलाया जाव एकाकी जाइब संगे न लाइब। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं कि रात में उठकर मैं अकेला वन पथ होकर वृंदावन की यात्रा करें, क्योंकि मैं दिन में जाना इसलिए नहीं चाहता हूं कि दिन में मैं यदि वृंदावन चलने लगूं तो ये सारे भक्त मेरे साथ चलने के लिए उद्यत हो जाए। इसलिए मैं रात में उठकर अकेले जाना चाहता हूं और मैं मेन रोड तो मुख्य मार्ग है उस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुख्य मार्ग पर जाने से कोई भक्त देखेगा वो भी हमारे साथ चलने के लिए कहेगा, तो मैं तो किसी को मना नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं अकेले जाना चाहता हूँ, रात में उठकर जाना चाहता हूँ और मुख्य मार्ग से न जाकर वन पथ में जाना चाहता हूँ, वन पथ में होकर सब जाना चाहता हूँ जिससे कि मुझे कोई ना दे। तब एकाकी जाइबा कहूं संगे ना लाइबा, किंतु मैं अकेला जाऊंगा किसी को साथ नहीं लूंगा, ये मेरी इच्छा है। के हि संग लैते पाछे उठी धाया सवारी राखी बाजना के नहीं जाया। तो चैतन्य महाप्रभु यही सहायता मांग रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद से। कह रहे हैं यदि किसी को पता चलेगा कि मैं वृंदावन जा रहा हूं किसी भक्त को, और वो भक्त मेरे पीछे पीछे आने लगेगा, तो तुम लोगों से मैं यही सहायता मांग रहा हूं कि तुम लोग उस भक्त को रोकना, उसको मेरे पीछे आने मत देना। सबारे रखना देना कह नहीं जा, सबको तुम लोग रोक करके रखना जैसे कि मेरे साथ ना चल। प्रसन्न है यहाँ आज्ञा दीवा ना मानीवा दुख तुम सवा सुखे पथे हवे मोरा सुख। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप लोग इससे बुरा मत मानना, आप लोग प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दें जिस प्रकार मैं वृंदावन की यात्रा करता हूं। तो प्रसन्न है या आज्ञा दीवा नामा निवा दुख, तो आप लोग दुखी मत होना कि मैं किसी को साथ लेना नहीं चाहता हूं। तुम सवार सुखे मोर पथे हवे से, तुम लोग यदि सुखी हो गए तो मेरा मार्ग भी सुगम हो जाएगा, मार्ग पर कोई असुविधा नहीं होगी। तो तुम लोगों को सुख प्रदान करना ये मेरी इच्छा है, मैं तुम लोगों को दुखी करना नहीं चाहता, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई ना जाए, यही मेरी इच्छा है। दुई जन कहे तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र, जे इच्छा सही करीबा न परतंत्र। तब स्वरूप रामानंद गोस्वामी और राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप किसी के अधीन नहीं है। जो भगवान वो किसी के अधीन नहीं होते, सारा संसार उनके अधीन होता है। यहाँ तक कि जो प्रकृति है, भगवान की माया शक्ति भी भगवान के अधीन है। मया दक्षिण प्रकृति स्वयते सत्वाचरम हेतु नानन कंते जगत भी परिवर्तन। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और इस सरासर जगत की रचना करती है, सृष्टि करती है। तो भगवान के अधीन सब लोग, भगवान किसी के अधीन नहीं। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप किसी के अधीन नहीं है या किसकी सहायता की आपकी आवश्यकता नहीं। किंतु यही इच्छा सही करीबा नहीं परतंत्र, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप हमसे क्या सहायता मांग रहे हैं। किंतु अमा दुहार सुना एक निवेदन, किंतु हम दोनों का एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि तुम्हार सुख है अमार सुख पहला अपन। कि आपने अभी अभी कहा कि हम लोगों को जो सुख होगा, अर्थात हमारे लिए जो सुख होगा, इससे आपको भी सुख प्राप्त होगा। तो आप अब श्रवण करिए, हम लोगों का सुख किसमें है, हम लोग भी क्या चाहते हैं। आपने बता दिया कि आपकी इच्छा क्या है और हमारा सुख इस बात में हम अभी व्यक्त कर रहे हैं। आमा दुहार मने सब सबे बड़ा सुखा है, एक निवेदन यदि धरा दया में। तो हम लोगों के मन में इससे सुख प्राप्त होगा, मन को सुख प्राप्त होगा यदि आप हमारे निवेदन को ग्रहण करें, क्योंकि आप दयामय हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं, इसलिए हम पर भी आप कृपा करिए, हमारे निवेदन को ग्रहण करिए और इस प्रकार हमारी इच्छा को आप सुनिए। उत्तम ब्राह्म एक संग अवश्य जावे, उत्तम ब्राह्म एक संगे अवश्य चाहिए, भिक्षा करी भिक्षा दिवे जावे पात्र। तो हम लोग चाहते हैं कि एक उत्तम ब्राह्मण आपके साथ चले और उसका कार्य क्या होगा कि वो आपके भिक्षा पात्र को वहन करेगा और उसके साथ साथ आपके लिए भिक्षा करेगा। क्योंकि मार्ग में आप वनपथ में जाएंगे तो आपको वहां खाद्य नहीं मिलेगा, वनपथ में कौन आपको खाद्य वस्तु प्रदान करेगा। इसलिए ये व्यक्ति जो साथ में जाएगा, ये जहां जहां रास्ते में मार्ग पर गांव आएंगे वहां पर भिक्षा करेगा और आपके लिए ये अन्न प्रस्तुत करेगा, जिससे आपको ये मार्ग पर कोई असुविधा नहीं, ये आपकी सहायता करेगा। और आपका जो जल पात्र है इसको और वस्त्र है इसको भी वहन करेगा साथ, क्योंकि आप तो भगवान के प्रेम में, कृष्ण प्रेम में भगवान का दिव्य नाम कीर्तन करते हुए जब नृत्य करते हुए मार्ग में जाएंगे तो उस समय आपके वस्त्र और आपके जलपात्र के लिए आपका कोई ध्यान नहीं रहेगा। और जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार चलते थे नाम कीर्तन करते हुए, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान के नाम कीर्तन और नृत्य करते हुए चलते थे, इसलिए उनके लिए उनका वस्त्र और जलपात्र को वहन करना संभव नहीं था। तो ये स्वरूप रामोदर गोस्वामी और राय रामानंद चाह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु के साथ यदि कोई उपयुक्त ब्राह्मण जाए साथ में तो उनकी सहायता करेगा मार्ग में, उनका वस्त्र दल पत्र वहन करेगा और उनके लिए भिक्षा करके उनको भिक्षा प्रदान करेगा। वनपथे जाते नाही भोजन न ब्राह्मण आज्ञा कर संगे तलुक विक्रय कर। तो ये वन पथ पर यात्रा करने के लिए ऐसा कोई उपयुक्त ब्राह्मण चाहिए जो आपके साथ में जाएगा और आप उसके हाथ से भोजन कर सकें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जहां कहीं भोजन नहीं कर सकते। शुद्ध ब्राह्मण यदि खाद्य प्रस्तुत करता था और भगवान को भोग लगा के उनको प्रदान करता था तब उसको वो ग्रहण करते, अन्यथा यदि दूसरे कोई व्यक्ति उनको भिक्षा ग्रहण करने के लिए बोलते थे तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर नहीं जाते, इसलिए दूसरे लोग उनके जो सेवक था साथ में उनको चावल दाल सब्जी सब दे देते थे। अनेक भक्त और इन अनेक भक्तों से मैं यदि किसी एक को सुनूं तो दूसरा भक्त सोचेगा कि महाप्रभु ने मुझे नहीं लिया साथ में, उसके मन में दुख होगा, दूसरे भक्त दुखी होंगे, इसलिए मैं किसी को लेना नहीं चाहता हूं साथ, किसी को दुख देना नहीं चाहता। नूतन संग है स्निग्ध दार मन ऐसे जबे भाई तबे लई एक जन। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि कोई नूतन भक्त होगा जो यहाँ जगन्नाथपुर में नहीं रह रहा, क्योंकि यहाँ जितने भी भक्त हैं मेरे साथ में रह रहे हैं, इनमें से मैं किसी एक को साथ में लूंगा तो दूसरा भक्त के मन में दुख हो, किंतु मैं चाहता हूँ यदि कोई नया भक्त होगा जो दूसरे स्थान से आया हो, यहाँ जगन्नाथपुर में नहीं रहता हो, तो ऐसे भक्त को मैं ले सकता हूं, किंतु एक शर्त कि उसका मन स्थिर होना चाहिए, उस भक्त का मन चंचल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भक्त का मन चंचल है वो कहीं किसी भी समय किसी के प्रति किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रति आकृष्ट हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु को इसका अनुभव भी है, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे तो उस समय उनके साथ एक सेवक था जिसका नाम था काला कृष्णदास, वो भी ब्राह्मण था। तो वो सेवक चैतन्य महाप्रभु के साथ आया था दक्षिण भारत और चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे थे हरिनाम संकीर्तन का, और इस प्रकार दक्षिण भारत के सारे लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव बना दिया था। तो उसी समय ये काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है उनके साथ था, फिर भी ये मार्ग में कुछ बंजारे लोग रह रहे थे और उनकी स्त्रियों से ये आकृष्ट हो गया था काला कृष्णदास, उनके जाल में फंस गया काला कृष्णदास, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु को बहुत कष्ट हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने कष्ट का अनुभव किया कि उनका सेवक किसी स्त्री के चंगुल में फंस गया है, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाकर उसका उद्धार किया काला कृष्णदास। और दक्षिण भारत से लौट जाने के पश्चात वो काला कृष्णदास को और साथ में नहीं रखे चैतन्य महाप्रभु, उनको बंगाल भेज दिए। तो ये अनुभव था चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि काला कृष्णदास का मन चंचल था इसलिए वो स्त्रियों से आकृष्ट हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे एक भक्त चाहते थे अपने साथ में जिसका मन स्थिर हो, जिसका मन चंचल नहीं हो, वो स्त्रियों से आकृष्ट नहीं हो, ये उनके कहने का मतलब है। तो कहते हैं स्निग्धदार मन ऐसे जबे भाई तबे लई एक हजार, यदि इस प्रकार का कोई एक भक्त मुझे मिले तब मैं उस भक्त को साथ में ले सकता, अन्यथा جس وقت کا من چنچل ہے اس کو میں ساتھ لینا نہیں چاہتا. تو اس پرکار جب چیتنیہ مہاپربھو نے یہ شرط رکھ دی تو اس سمے سوروپ دامودر گوسوامی جو للتا کے اوتار سوروپ دامودر گوسوامی اور رائے رامانند یہ وشاکھا سکھی کے اوتار تو سوروپ دامودر گوسوامی کہتے ہیں کہ یہی سوروپ کہے یہی بلا بھدر بھٹاچاریہ تما پہ سوشکن بڑا پنڈت سادھو آرہے. تو سوروپ دامودر گوسوامی نے کہا کہ آپ جیسا بھکت چاہتے ہیں ایسا بھکت ابھی ایک آیا ہے بنگال سے آیا ہے اور اس کا نام ہے بلبھدر بھٹاچاریہ. یہ برہمن ہے اور تما پہ سوسنگھ سنیہ سوسنگھ بڑا. تو یہ بلبھدر بھٹاچاریہ کا آپ کے پرتی اتیادھک پریم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلبھدر بھٹاچاریہ براہمن پریوار سے آیا ہے اس لیے وہ بہت بڑا ودوان پنڈت بھی ہے, شاستروں کا گیان اس کو ہے اور یہ سادھو سوبھاؤ والا بھی یہ بھکت سوبھاؤ والا ہے اور یہ اس کا من جو ہے یہ ستھر رہتا ہے, ستھر من ہے اس کا, سادھو سوبھاؤ یکت ہے اور آریہ اور بہت بھدر ویکتی ہے. یہ آپ کے لیے کوئی پریشانی یا کشٹ اتپن نہیں کرے گا. ایسے وقت ایک آیا ہے بنگال سے, آپ اس کو ساتھ میں لے سکتے ہیں, اس کو لینے سے دوسرے بھکتوں کے من میں دکھ نہیں ہوگا. تو اس پرکار چیتنیہ مہاپربھو کی جو شرط تھی اس کے انوسار ایک برہمن مل گیا. سوروپ دامودر گوسوامی نے ایک نام प्रस्ताव रखा, प्रथम तुमा संगे आईला गौड़ है से यहाँ का इच्छा आचर सर्व तीर्थ करी थी. तो ये जो ब्राह्मण है ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं ये आपके साथ आया था जगन्नाथ पुरी और इसके मन में ये इच्छा है कि ये भारत में सारे भारत में भ्रमण करके तीर्थाटन करेगा. तो भक्तों की कभी कभी ये इच्छा होती है तीर्थाटन करने के लिए, अर्थात भगवान के जो लीला स्थान है उनका दर्शन करने के लिए. ऐसे भक्त लोग किसी तीर्थ में शुद्ध होने के लिए नहीं जाते. तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि, जो भगवान के भक्त होते हैं ये लोग जब किसी तीर्थ में जाते हैं तो स्वयं पवित्र होने के लिए नहीं जाते, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से भक्त स्वयं पवित्र हो जाते हैं. इसलिए उनको तीर्थाटन करने की कोई आवश्यकता नहीं है. किंतु जब भक्त लोग तीर्थ करने जाते हैं तो तीर्थों को शुद्ध करने जाते हैं, तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि. और वह कैसे, क्योंकि संसार के सारे लोग तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ जल में स्नान करते हैं और अपने पापों को वहीं छूट कर आ जाते हैं. तीर्थ में स्नान करने का अर्थ है पापों से मुक्त होना, पापों को वहीं छोड़कर आ जाना. तो इसलिए बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में लाखों की भीड़ होती है, लोग जाते हैं जल में स्नान करने के लिए. किंतु इस प्रकार के लोगों से, लोगों के पापों के भार से तीर्थ भी बोझिल हो जाते हैं. और जब भक्त लोग जाते हैं तीर्थ में स्नान करने के लिए तो ये तीर्थ लोग भक्तों को वो पाप दे देते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं पापों के भार. इसलिए तीर्थों का ये तीर्थ हो जाता है जब कोई महान भक्त तीर्थ में जाते हैं स्नान करने के लिए. तो महान भक्त भी तीर्थों को पवित्र कर देते हैं, उनको पापों के भार से मुक्त कर देते हैं. तो इसलिए ये बलभद्र भट्टाचार्य इनके मन में ये अभिलाषा है, ये तीर्थाटन करना चाहता है. वस्तुतः भक्त लोग भगवान के लीला स्थान के दर्शन में रुचि रखते हैं, भगवान ने जहां जहां लीलाएं की हैं वहां पर जाते हैं भगवान के लीला स्थान का दर्शन करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं। तो ये बलभद्र भट्टाचार्य की इच्छा थी, ये ऐसे केवल तीर्थ जल में स्नान करने के लिए नहीं जाना चाहते थे, किंतु भगवान के लीला स्थान का दर्शन करना चाह रहे थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि बलभद्र भट्टाचार्य के मन में ये इच्छा है तीर्थाटन करने के लिए, और आप जा रहे हैं वृंदावन, भगवान कृष्ण का लीला स्थान है वृंदावन धाम, तो ये भी वृंदावन जाने के लिए इच्छा प्रकट करता है, तो आप इसको साथ ले जाए, ये भी वृंदावन का दर्शन इसका हो जाएगा और आपकी सेवा भी वही करेगा। यह संगे आपसे विप्र एक अभृत्य यहां पर से करीब है ना सेवा भिक्षा करते, और इस बलभद्र भट्टाचार्य के साथ और उसका एक सेवक भी है जो उसके साथ आया है, तो आप बलभद्र भट्टाचार्य को साथ में ले जाएंगे तो उनका सेवक भी उनके साथ चलेगा, तो आपको दो व्यक्ति मिल जाएंगे आपकी सेवा करने के लिए। इस प्रकार आप ये बलभद्र भट्टाचार्य आपके लिए भिक्षा करेगा और भिक्षा प्रस्तुत करेगा, आपके लिए भोजन प्रस्तुत करेगा, और उसका जो सेवक है वो आपका जल पात्र और वस्त्र साथ में लेकर चलेगा। यह संगे लय लई जति सवार हय सुख वन पथ जाते कुमार नहीं बैठना दुख, इन दोनों का आप यदि साथ में लेंगे तो वन मार्ग में आपका कोई कष्ट, आपको कोई कष्ट नहीं हो, और इसी में हम लोग सुखी हो कि आपके साथ दो सेवक हैं, आप अकेले नहीं, क्योंकि भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के लिए चिंतित कि चैतन्य महाप्रभु अकेले जाएंगे तो कष्ट होगा, इसलिए भक्तों का चैतन्य महाप्रभु के जो प्रेम था उसके कारण उनको कष्ट हो रहा था। तो सही विप्र वही निवे वस्त्रम्भ भाजन भट्टाचार्य भिक्षा दिवे करी विख्याटन, तो इस प्रकार बलभद्र भट्टाचार्य आपके भिक्षा का प्रबंध करेगा और उनका सेवक आपका जल पात्र और वस्त्र वहन करेगा। ताहार वचन प्रभु अंगीकार कैल बलभद्र भट्टाचार्य संगे करी नील, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद की कथा को स्वीकार कर की, उन्होंने कहा कि ठीक है अब बलभद्र भट्टाचार्य तुम लोग यदि कह रहे हो तो वो हमारे साथ। तो यहाँ पर एक बात देखने की कि कभी कभी हम यदि भगवान की सेवा प्रत्यक्ष रूप से करना चाहते हैं तो हो सकता है कि भगवान हमारी सेवा को ग्रहण न करें, किंतु यदि कोई भक्त हमें रेकमेंड करता है, हमें सेवा में नियुक्त करता है, तो भगवान उस सेवा को ग्रहण करता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कोई भी भक्त को साथ लेना नहीं चाहते, किंतु जब उनके अंतरंग भक्तों ने ये प्रस्ताव रखा और बलभद्र भट्टाचार्य के गुणों की प्रशंसा की तो चैतन्य महाप्रभु राजी हुए उसको लेने के लिए। तो उसी प्रकार भक्त को भक्ति का संपादन, भगवान की सेवा अपने भक्तों के निर्देशन में करना चाहिए, गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, अपने मनमाने ढंग से सेवा नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो गुरु होते हैं तो शिष्य को भगवान की सेवा में नियोजित कर देते हैं, वो जानते हैं कि शिष्य का भाव क्या है और उसके भाव के अनुसार वो भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, और इस प्रकार भगवान उस सेवा को ग्रहण करते हैं। तो भक्त लोग जब भगवान की सेवा में किसी को नियोजित करते हैं तो भगवान उसकी सेवा को ग्रहण करते हैं, किंतु अपने मनमाने ढंग से कोई सेवा करे तो हो सकता है भगवान उस सेवा को ग्रहण न करे। तो यदि बलभद्र भट्टाचार्य जो स्वयं जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ तो चैतन्य महाप्रभु उनको नहीं लेते, किंतु दो भक्तों ने उनको रिकमेंड किया, उनको लेने के लिए साथ में उनकी संस्तुति की है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु राजी होते बलभद्र भट्टाचार्य को लेने के लिए। तो पूर्व रात्र जगन्नाथ देखी आज्ञा लया शेष रात्र उठी प्रभु चलिला लुकाया। तो जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा करने के लिए अब राजी हो गए इस बलभद्र भट्टाचार्य को साथ में लेने के लिए, तो पूर्व रात्र जिस दिन वो निकले उस रात में, उस रात के प्रथम प्रहर वो जगन्नाथ जी के मंदिर में गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। क्योंकि ये विधि है, किसी तीर्थ स्थान में आते हैं तो तीर्थ स्थान में, उस तीर्थ स्थान में जो आराध्य देव है, तीर्थ स्थान में आते ही उनका दर्शन करना, और तीर्थ स्थान को जब हम त्यागते हैं अर्थात वहां तीर्थ स्थान को छोड़कर जाते हैं उस समय भी उस आराध्य देव का दर्शन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की हर लीला हर कार्य ये हमें भक्ति सिखाने के लिए है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार तीर्थ त्याग करके कोई जाता है तो भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान को दर्शन करके उनसे आज्ञा लेकर जाना है। तो ये सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो जबकि चैतन्य महाप्रभु को रात्रि में जाना था वृंदावन की ओर, तो रात्रि के प्रथम प्रहर संध्या के समय वो जगन्नाथ जी के मंदिर में गए दर्शन करने के लिए, और जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए उनकी आज्ञा ग्रहण जाने के लिए। तो जगन्नाथ जी की जो आज्ञा प्राप्त होती है तो ये कैसे पता चला चैतन्य महाप्रभु को कि जगन्नाथ जी ने उनको आज्ञा प्रदान की? तो जब चैतन्य महाप्रभु गए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए और जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे, तो जगन्नाथ जी का सेवक पुजारी जगन्नाथ जी की माला लाकर चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया। तो यही जगन्नाथ जी की आज्ञा माला, जब पुजारी भगवान का फूल, भगवान का चंदन या माला लाकर देता है किसी को, तो ये जानना चाहिए कि भगवान की कृपा उन पर हो रही है। ये कोई अकस्मात नहीं होता, भगवान प्रेरित करते हैं अपने सेवकों को। तो जो उनके सेवक हैं उनको प्रेरित करते हैं भगवान किसी को कृपा करने के, किसी पर कृपा करने के लिए, इसलिए वो पुजारी माला चंदन तुलसी आदि ला कर देता है। तो जब पुजारी ने चैतन्य महाप्रभु को माला प्रदान की तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अब जगन्नाथ जी की आज्ञा हो गई मुझे वृंदावन जाने के लिए। जबकि वो स्वयं भगवान है, कृष्ण है, किंतु वो लीला कर रहे हैं, भक्त की लीला कर रहे हैं। इसलिए भक्तों को जैसा करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु उसका आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जगन्नाथ जी की आज्ञा लेकर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, 600 रात्रि उठी प्रभु चलिला लुकाए। जब रात्रि के अंतिम प्रहर में छिप कर किसी भक्त को जैसे पता न चले, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य और उनके साथ जो सेवक था उसको साथ लेकर वो चल वृंदावन की ओर। प्रातः काले भक्तगण प्रभु न देखिया अन्वेषण करी फिरे व्याकुल। तो प्रातः काल में जब सब भक्त लोग आए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, क्योंकि भक्त लोग प्रातः आकर चैतन्य महाप्रभु को आकर उनके चरण में प्रणाम करते थे, तो उनके दर्शन करने के लिए आते थे। तो जब सुबह प्रातः काल में भक्त लोग आए चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, तो उस समय देखा कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर नहीं है। तो भक्त लोगों ने पूछा कि महाप्रभु कहाँ गए चैतन्य महाप्रभु? तो अन्वेषण करी फिर व्याकुल। तो इस प्रकार व्याकुल होकर भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु का अन्वेषण कर रहे हैं, खोज रहे हैं कहाँ गए चैतन्य महाप्रभु। स्वरूप गोसाई सवाय कैला निवारण निवृत हैया सह सबे जानी प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब ये भक्तगण खोज कर रहे थे, उनकी खोज कर रहे थे, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भक्त लोगों को बुलाया और कहा कि तुम लोग चैतन्य महाप्रभु की खोज मत करो, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आकर के चले गए हैं और तुम लोग कोई उनके पीछे नहीं जाना है, वो वृंदावन गए हैं और महाप्रभु किसी को नहीं चाहते हैं अपने साथ जाने के लिए, इसलिए तुम लोग सब यहीं पर रहो, कोई उनके साथ या उनके पीछे चलने के लिए प्रयास मत करो। निवृत्त है यहाँ रहे सब जानी प्रभु, तो प्रभु की चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को जानकर सब भक्त लोग निवृत्त होकर जगन्नाथपुरी में रहे, वो चैतन्य महाप्रभु के पीछे चलने का प्रयास नहीं किया। प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु उपपथे चलीला, कटक डाहिने करी बने प्रवेश। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की ओर से आ रहे हैं जगन्नाथपुरी से, तो मुख्य मार्ग पर नहीं आ रहे, तो मुख्य मार्ग को त्याग करके वो वन पथ में वन मार्ग में होकर आ रहे हैं। और कटक दक्षिण करी, अर्थात कटक एक शहर है उड़ीसा में, और तो जगन्नाथपुरी से 80 किलोमीटर दूरी पर है। तो वो जो कटक जो शहर है वो वस्तुतः पुरी के राजा की राजधानी उस समय थी, इसलिए उसका नाम कटक है। कटक का अर्थ होता है राजा, तो पुरी के राजा उस समय कटक में रहते और वहीं पर उनका दुर्ग भी थी। और जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते थे, उस समय दर्शन करते समय पुरी में विश्राम करने के लिए पुरी में भी उन्होंने एक महल बनवाया, राजमहल। तो पुरी के राजा प्रताप रुद्रदेव उस समय उड़ीसा के राजा थे, गजपति महाराज थे, और उनका निवास स्थान था कटक, और वो आते थे जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, और कभी कभी पुरी में भी रहते। तो कटक को दक्षिण में रखकर चैतन्य महाप्रभु वन पथ में आ रहे हैं वृंदावन की ओर। निर्जन बने चले प्रभु कृष्ण नाम लया, हस्ती व्याघ्र पत्थर छाड़े प्रभु ने देखिया। जब चैतन्य महाप्रभु उस समय पैदल आ रहे हैं और जंगल में प्रवेश किए, जंगल पथ में जंगल मार्ग में आ रहे हैं, तो जंगल में बहुत सारे बाघ हाथी भालू ये सब रहते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए चल रहे थे, तो जब चैतन्य महाप्रभु चल रहे थे तो नृत्य करते हुए चल रहे थे, और अपने दोनों बाहु को दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार ये महामंत्र का कीर्तन करते हुए और नृत्य करते हुए चल रहे। उनको ये ज्ञान नहीं था कि ये वन पथ है या वो कहाँ जा रहे हैं, किस मार्ग पर जा रहे हैं, और यहाँ पर हाथी बाघ भालू हैं, ये सब वो नहीं देख रहे थे। वो कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त चैतन्य महाप्रभु। तो जब इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर वन पथ में चल रहे थे वन मार्ग पर, तो वन मार्ग में जितने बाघ हाथी भालू अगर आदि आते थे, क्योंकि घूम रहे थे, तो ये लोग चैतन्य महाप्रभु को देखकर अपने आप मार्ग छोड़ देते थे, रास्ता छोड़ देते थे। चैतन्य महाप्रभु के मार्ग में कोई पशु खड़ा नहीं रहता था, तो ये कैसे संभव है? कोई वन में जाए तो बाघ भालू हाथी किसको रास्ता छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। किंतु चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे कृष्ण कीर्तन करते हुए, तो ये अपने आप मार्ग प्रशस्त कर देते थे चैतन्य महाप्रभु के जाने के लिए, कोई मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करते, सब एक साइड में हो जाते बाघ भालू आते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, सबके केवल मनुष्य के हृदय में नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने प्राणी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। सर्वस्वता हम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान नपोवन। तो भगवान उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं और उनसे ही ज्ञान स्मरण शक्ति और विस्मरण शक्ति आती है। तो भगवान जब पशु पक्षियों के हृदय में बैठे हुए हैं तो परमात्मा निर्देशित करते हैं उन पशुओं को मार्ग छोड़ देने के लिए। तो इसलिए पशु हाथी बाघ भालू ये सब चैतन्य मार्ग को मार्ग दे देते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रेम में मत हैं और भगवान जानते हैं कि किस प्रकार उनका भक्त उनके प्रेम में उन्मत्त रहता है, उसको कोई ज्ञान नहीं है बाह्य ज्ञान, और चैतन्य महाप्रभु जबकि स्वयं कृष्ण है किंतु भक्त का अभिनय कर रहे हैं इसलिए उनको बाह्य ज्ञान नहीं है कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर वो चल रहा है। और वो जब परमात्मा के रूप में इन पशुओं के हृदय में बैठे हुए हैं तो वही उनको निर्देश देते हैं मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, मार्ग में नहीं बाधा सृष्टि नहीं करने के लिए। तो पशु पक्षी ये सब बाघ भालू आदि रास्ता छोड़ देते हैं चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु आनंद में नृत्य कीर्तन करते हुए चल रहे हैं वन वन वन। निर्जन बने पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार सुकर गण तार मध्य अवश्य प्रभु करिला गमन। तो रास्ते में एक दो बाघ या हाथी नहीं थे, ये झुंड के झुंड बाघ, झुंड के झुंड हाथी, गैंडे ये सब घूम रहे थे, सुकर सुअर ये सब घूम रहे थे वन मार्ग। और चैतन्य महाप्रभु उन लोगों के बीच में होते हुए वो नाम कीर्तन करते हुए चल रहे थे, उनको कोई भय नहीं था कि ये बाघ है कैसे मैं जाऊंगा। साधारण व्यक्ति को भय हो जाता कोई बाघ, ये झुंड के झुंड बाघ क्या एक बाघ कोई देखे तो भयभीत होकर भाग जाएगा, वो वन पथ पर अकेला नहीं चलता। किंतु जो भक्त होते हैं ये भगवान पर निर्भर करते हैं। इसलिए कहा गया है कि भक्त लोग एकांत में समग्र पृथ्वी में भगवान के ऊपर निर्भर करते हुए भ्रमण करते हैं, इससे वो भय शून्य हो जाता है। भगवान के ऊपर निर्भर करते हुए जब भक्त समग्र संसार में विचरण करता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं, ये भक्त को अनुभव होता है प्रति पदक्षेप किस प्रकार भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो इससे भक्त को भगवान का अनुभव जीवन के प्रति पदक्षेप में होता है। तो इसलिए भक्त लोग जानबूझकर अपने को इस प्रकार की स्थिति में डालते हैं जिससे कि वो भगवान के ऊपर अधिक से अधिक निर्भर कर सकें। तो चैतन्य महाप्रभु वन पथ पर जा रहे हैं तो उनको कोई भय नहीं, वो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त, इसलिए झुंड के झुंड बाघ हाथी इनके बीच जाने में उनको कोई डर नहीं लग रहा। देखी भट्टाचार्यर मने हय महाभय प्रभुर प्रतापे तारा एक पास है। किंतु चैतन्य महाप्रभु को कोई भय नहीं था किंतु वो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त, उनको ज्ञान नहीं था कि यहाँ बाघ है यहाँ भालू है यहाँ हाथी है, ये ज्ञान नहीं था। वो तो कृष्ण का स्मरण करते हुए उनके प्रेम में उन्मत्त होकर चल रहे, वो तो हर जगह कृष्ण ही देख रहे। स्थावर और जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति। जो भगवान का महान भक्त होता है वो स्थावर जंगम जो कुछ भी देखता है उनकी मूर्ति को उनके रूप को नहीं देखता, वो हर रूप में अपने इष्ट का दर्शन करता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब जंगल में वृक्ष हैं बाघ हैं हाथी हैं पशु पक्षी हैं इन सबको जब देखते थे तो उनके रूप को नहीं देखते थे, ये नहीं देखते थे कि ये बाघ है ये भालू ये हाथी, ये इन सब में अपने आराध्य कृष्ण का ही दर्शन करते, कृष्ण को देखते थे। अतः उनका मार्ग कृष्णमय हो गया, वो जहां कहीं भी देखते थे वो कृष्ण को ही अपने आराध्य कृष्ण को ही देखते थे, कृष्ण का दर्शन करते। बाघ भालू हाथी का दर्शन नहीं करते, इसलिए उनको डर किस बात की, उनको इसलिए भय नहीं था क्योंकि वो कृष्ण को ही हर जगह हर रूप में सबके हृदय में दर्शन कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को भय नहीं था, किंतु उनका जो सेवक था बलभद्र भट्टाचार्य जो साथ में चल रहा था वो बहुत भयभीत हो रहा था क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के पीछे चल रहा था। और चैतन्य महाप्रभु को देखकर ये जितने बाघ हाथी आदि थे झुंड के झुंड, ये सब एक साइड में हो जाते थे, एक पास में रहते थे, किंतु बलभद्र भट्टाचार्य पीछे चलते थे, इनको बहुत भय लगता था ये बाघ और हाथियों को देख कर, ये डरे हुए थे। तो एक दिन पथे व्याघ्रह करिया से सहन आबे से तार गाये प्रभुर लागिला सरण। तो एक दिन क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं वन मार्ग पर कृष्ण संकीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए, और उनको ये ध्यान नहीं है कि एक बाघ रास्ते में सोया हुआ, उनको ये ध्यान नहीं है, वो तो भगवान कृष्ण के आवेश में नृत्य करते हुए चल रहा है। तो इस प्रकार जाते जाते चैतन्य महाप्रभु का चरण बाघ के शरीर में लग गए, क्योंकि सोया हुआ था रास्ता, वो रास्ता नहीं दिया था वो बाघ, चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष लीला। पहले हम लोगों ने सुना कैसे बाघ और हाथी भालू आदि चैतन्य महाप्रभु रास्ता छोड़ देते, किंतु ये बाघ उस दिन सोया हुआ है रास्ते में, उसने मार्ग नहीं दिया था चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु उस मार्ग पर जा रहे हैं नृत्य कीर्तन करते हुए, और इस प्रकार जाते जाते उनका चरण लग गया बाघ का शरीर, उनका चरण स्पर्श कर गया। तो अब क्या हुआ सुनिए, आबे से तार गाये प्रभुर लागिल चरण, प्रभु कहे कह कृष्ण व्याघ्र उठिल। जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण स्पर्श किए बाघ के शरीर में, तो चैतन्य महाप्रभु को बाह्य ज्ञान हो, तब तक तो वो कृष्ण के आवेश में चल रहे, किंतु जब चरण स्पर्श हुआ तो उन्होंने देखा नहीं, बाह्य ज्ञान हो, तो देखा कि बाघ सोया हुआ है।